एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज की ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसी कहानीकार के संसार में झांक रहे हैं जिनकी कलम ने ना सिर्फ लातिनी अमेरिका बल्कि दुनिया भर के पढ़ने वालों पर एक जादू सा कर दिया है।
जी हाँ,
एक ऐसी आवाज जिन्होंने कहानियों में कल्पना और यथार्थ के ताने बाने को एक नया, मतलब औरतों के नजरिए से देखा जाने वाला आयाम दिया।
हम बात कर रहे हैं इसाबेल आयंदे की। उनकी कहानियों में ना जिंदगी के निजी उतार चढ़ाव, फिर परिवार का इतिहास और मुल्क की सियासी उथल पुथल, ये सब एक साथ घुल मिल जाते हैं बड़े अनोखे ढंग से।
आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनके तजुर्बे उनकी लेखनी में ढले और क्यों आज भी उनकी कई बातें इतनी मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस माहौल से जिसमें आयंदे ने लिखना शुरू किया। वो लातिनी अमेरिकी साहित्य के बूम दौर के ठीक बाद आई जिसमें गार्सिया मार्केस जैसे बड़े नाम थे,
जी,
लेकिन आयंदे ने अपनी एक अलग पहचान बनाई जिसे पोस्ट बूम कहा जाता है। ये बूम और पोस्ट बूम, ये आखिर है क्या?
थोड़ा समझाएंगी। देखिए, बूम वो दौर था करीब 1960-70 का दशक, जब लातिनी अमेरिकी लेखकों ने दुनिया भर में धूम मचा दी थी।
हाँ, सुना है।
उनकी खासियत थी कहानी कहने की नई शैली, जिसमें अक्सर जादुई यथार्थवाद का इस्तेमाल होता था। मतलब ऐसी कहानियां जहां असल दुनिया में जादुई या अविश्वसनीय घटनाएं बिल्कुल आम बात की तरह घटती हैं।
अच्छा,
गार्सिया मार्केज, वर्गास लियोसा, ये सब उसी पीढ़ी के थे। तो आयंदे जब आईं, उन्होंने इस जादुई यथार्थवाद को तो अपनाया, लेकिन उसमें एक नया रंग भरा। उन्होंने औरतों की जिंदगी, उनके रिश्ते, घर परिवार की दुनिया, इन सबको कहानी के केंद्र में रखा, जो बूम लेखकों में उतना नहीं दिखता था।
अच्छा, मतलब फोकस अलग था।
हाँ, फोकस अलग था। इसी को पोस्ट बूम की एक खासियत माना जाता है। विषयों का विस्तार हुआ और शायद थोड़ी ज्यादा सीधी राजनीतिक टिप्पणी भी आई।
और उस वक्त लातिनी अमेरिका का राजनीतिक माहौल भी तो मतलब काफी उथल पुथल वाला था। शीत युद्ध का असर, तानाशाही।
बिल्कुल, लातिनी अमेरिका उस समय शीत युद्ध का एक बड़ा अखाड़ा बना हुआ था, खासकर 1973 में चिली में जो सैन्य तख्तापलट हुआ,
हाँ,
जिसने आयंदे के चाचा राष्ट्रपति सल्वाडोर आयंदे की लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर जनरल पिनोशे की तानाशाही स्थापित कर दी। वो घटना, वो इसाबेल आयंदे के जीवन और लेखन के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई।
जाहिर है।
उन्हें देश छोड़ना पड़ा, निर्वासन झेलना पड़ा, और इसी निर्वासन के दौरान लिखना उनके लिए सिर्फ शौक नहीं रहा, वो एक तरह से अपनी जड़ों से जुड़े रहने, सच्चाई को बचाने और विरोध दर्ज करने का एक तरीका बन गया।
ये जानना भी दिलचस्प है कि उनका जन्म चिली में नहीं हुआ था, वो 1942 में लीमा, पेरू में पैदा हुई थी।
हाँ, क्योंकि उनके पिता वहां चिली के राजनयिक थे। फिर छोटी उम्र में ही माँ बाप अलग हो गए और वो माँ के साथ चिली लौट आईं। उनका बचपन नाना नानी के घर में बीता, जो बड़ा दिलचस्प था।
कैसा?
कहानियों से भरा, अजीबोगरीब रिश्तेदारों से भरा और एक रहस्यमयी माहौल। खासतौर पर उनकी नानी, जो थोड़ी आध्यात्मिक किस्म की थी, वो आत्माओं से बात करने का दावा करती थी।
अरे वाह।
उन्होंने इसाबेल की कल्पना को बहुत सी कहानियों और पारिवारिक किस्सों से सींचा। यहीं से शायद उनके जादुई यथार्थवाद की जड़ें जुड़ी। मतलब जहां अजीब और अलौकिक बातें भी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थीं।
समझ गया। और बाद में माँ और सतेले पिता के साथ बोलिविया और लिबनान में भी रहीं, इसका भी असर पड़ा होगा उनके नज़रिए पर।
निश्चित रूप से, इन जगहों पर रहने से उन्हें एक बाहरी होने का एहसास हुआ, अपनी पहचान और अपनेपन की तलाश का अनुभव मिला। ये भाव ये उनके कई किरदारों में झलकता है, जो अक्सर विस्थापित होते हैं या अपनी जगह खोज रहे होते हैं।
और ये बात भी है कि लेखिका बनने से काफी पहले चिली में उनका पत्रकारिता और टेलीविजन में अच्छा खासा नाम था।
हाँ हाँ बिल्कुल,
उन्होंने पाउला नाम की एक फेमिनिस्ट मैगजीन के लिए भी काम किया।
सही कहा। वो उस वक्त अपने मजाहिया और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती थी। सामाजिक मुद्दों पर लिखती थी, लेकिन फिर 1973 का तख्ता पलट, उसने सब कुछ पलट दिया।
सल्वाडोर आयंदे की सरकार गिरने के बाद माहौल बहुत खतरनाक हो गया। उन्होंने कुछ समय तक तो छिपे तौर पर लोगों की मदद की, लेकिन आखिरकार 1975 में उन्हें वेनेजुएला जाना पड़ा, जहां वो अगले 13 साल रहीं।
13 साल, और वहीं से उनके पहले उपन्यास का जन्म हुआ, है ना, वो दादाजी वाली कहानी।
हाँ, ये बड़ा मार्मिक किस्सा है। 1981 में उन्हें खबर मिली कि चिली में उनके 99 साल के दादाजी बहुत बीमार हैं, मृत्यु के करीब हैं।
और वो निर्वासन के कारण उनसे मिलने नहीं जा सकती।
ओह।
तब उन्होंने उन्हें एक लंबा खत लिखना शुरू किया, उन यादों, कहानियों, पारिवारिक इतिहास को समेटते हुए जो वो दादाजी से कहना चाहती थी। कहते हैं वो लिखती गईं और वही खत धीरे धीरे वो उनका पहला और सबसे मशहूर उपन्यास बन गया, द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स।
कमाल है, मतलब व्यक्तिगत दुख और देश से दूरी ने कैसे कला को जन्म दिया।
बिल्कुल।
तो यहाँ से आयंदे के खास साहित्यिक योगदान की बात शुरू होती है। आपने कहा उन्होंने जादुई यथार्थवाद को एक स्त्रीवादी नजरिया दिया, इसे थोड़ा और समझाएंगी, ये पहले के लेखकों से अलग कैसे था?
हाँ, इसमें कई परतें हैं। पहली बात तो ये कि जहाँ पहले के बूम लेखक अक्सर मर्दों की दुनिया पे ज्यादा ध्यान देते थे, राजनीति, युद्ध, सत्ता संघर्ष, आयंदे ने कहानी का फोकस औरतों, घर परिवार, रसोई, पीढ़ियों के आपसी रिश्तों पे शिफ्ट कर दिया। उन्होंने दिखाया कि इतिहास सिर्फ बाहर की बड़ी घटनाओं से नहीं बनता, बल्कि घर की चार दीवारी के अंदर औरतों की जिंदगी में उनके प्यार, उनकी तकलीफों, उनकी दोस्ती, उसमें भी रचा और महसूस किया जाता है।
अच्छा।
दूसरी बात, उनके यहाँ जादू सिर्फ कोई चमत्कार या फैंटेसी नहीं है, वो अक्सर औरतों की अंदरूनी ताकत, उनकी इंट्यूशन यानी सहज ज्ञान, उनकी भावनाओं की सच्चाई और मुश्किल हालात में टिके रहने की उनकी क्षमता का प्रतीक बन जाता है।
यानी व्यक्तिगत और राजनीतिक का जो संगम है वो औरतों के नजरिए से दिखाया गया।
बिल्कुल। उन्होंने उन आवाजों को सामने लाया जिन्हें इतिहास अक्सर नजरअंदाज कर देता है, औरतें, नौकरानियां, समाज के हाशिए पर खड़े लोग। उन्होंने ये दिखाया कि घर कोई निजी अलग थलग जगह नहीं है, वो भी इतिहास और राजनीति का एक अहम मैदान है, जहां सत्ता के समीकरण काम करते हैं, जहां विरोध होता है, जहां यादें संजोई जाती हैं।
और कहानी कहने की कला पर उनका बहुत जोर है। ऐसा लगता है जैसे कहानी सुनाना ही अपने आप में एक ताकतवर काम है उनके लिए।
हाँ हाँ, उनके लिए कहानी कहना सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये जिंदा रहने का, अपनी पहचान बचाने का, जख्मों को भरने का और यहां तक कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने का एक तरीका है।
अच्छा।
उनके कई किरदार खुद कहानीकार होते हैं, जैसे ईवा लूना में, जो अपनी कल्पना और कहानियों के सहारे गरीबी और मुश्किलों से लड़ती है।
आयंदे का मानना है कि हम जो कहानियां सुनाते हैं वही हमारी पहचान बनाती हैं।
और खासकर ऐसे समाज में जहां सच को दबाया या मिटाया जा रहा हो, वहां यादों को कहानी के जरिए जिंदा रखना वो अपने आप में एक राजनीतिक प्रतिरोध बन जाता है।
उनका एक मशहूर कथन भी है जो इसी बात को दर्शाता है, वही लिखो जिसे भुलाया नहीं जाना चाहिए।
क्या बात है। चलिए उनकी कुछ अहम किताबों का जिक्र करते हैं। द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स 1982 तो है ही, जिसने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। हाँ बिल्कुल, ये किताब चिली, हालांकि नाम नहीं लिया गया, कि कई दशकों के इतिहास की पृष्ठभूमि में एक परिवार की चार पीढ़ियों की कहानी है। इसमें वो सब कुछ है जो आयंदे की पहचान है, क्लारा जैसी मजबूत रहस्यमयी औरतें, एस्तेबान ट्रूबा जैसा दमनकारी पुरुष पात्र, इतिहास का चक्र, प्यार, हिंसा और वो जादू जो असलियत से गुंथा हुआ है, और ये व्यक्तिगत और राजनीतिक का बेहतरीन संगम है।
हाँ।
इसी किताब से एक बहुत खूबसूरत पंक्ति है जो यादों की ताकत बताती है, मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं होती, लोग तभी मरते हैं जब हम उन्हें भूल जाते हैं, अगर तुम मुझे याद रख सको तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
वाह, बहुत गहरा।
इसके बाद ऑफ लव एंड शैडोज 1984 आई, जो शायद पिनोचे की तानाशाही पर ज्यादा सीधे तौर पर बात करती है। हाँ, उसमें जादुई तत्व कम है, और ये दो पत्रकारों की कहानी है जो तानाशाही के जुर्मों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। ये राजनीतिक सच्चाई और प्रतिरोध पर ज्यादा केंद्रित है। फिर ईवा लूना 1987 और उसकी साथी किताब द स्टोरीज ऑफ ईवा लूना 1989 आई, जिनमें कहानी कहने की ताकत का जश्न मनाया गया है।
और फिर वो किताब जो बहुत ही निजी और दर्द भरी है, पौला।
पौला, हाँ, ये एक संस्मरण है जो उन्होंने अपनी बेटी पौला की गंभीर बीमारी और फिर मौत के दौरान लिखा था। ये एक तरह से बेटी के बिस्तर के पास बैठकर उसे लिखी गई चिट्ठी है, जिसमें वो उसे अपनी, अपने परिवार की, चिली की कहानी सुनाती हैं। ये दुख, यादों और एक माँ के बेइंतहा प्यार का बहुत ही मार्मिक और ताकतवर दस्तावेज है।
हाँ, मैंने पढ़ी है, बहुत भावुक कर देने वाली किताब है।
जी, इसने आयंदे को उनके पाठकों के और भी करीब ला दिया। इसमें जीवन के विरोधाभास पर एक पंक्ति है, मेरी बहन तुम अभी बहुत छोटी हो ये जानने के लिए कि हर जीत एक हार भी होती है और हर हार एक जीत भी।
सही। बाद में उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों की तरफ भी रुख किया, जैसे डॉटर ऑफ फॉर्चून 1999
हाँ,
और हालिया अ लॉन्ग पेटल ऑफ द सी 2019।
हाँ, डॉटर ऑफ फॉर्चून कैलिफोर्निया गोल्ड रश के समय की कहानी है, आप्रवासन, पहचान, औरतों की आज़ादी की खोज जैसे मुद्दे उठाती है। और अ लॉन्ग पेटल ऑफ द सी ये स्पेनिश गृह युद्ध के उन शरणार्थियों की कहानी है जो कवि पाब्लो नेरुदा की मदद से चिली पहुंचते हैं।
अच्छा।
और फिर वहां 1973 के तख्ता पलट का सामना करते हैं। ये दिखाता है कि इतिहास, निर्वासन, प्रेम और इंसानी जज्बे, ये विषय उनके लिए कितने अहम रहे हैं लगातार।
जब हम उनकी तुलना उनके समकालीन बूम लेखकों से करते हैं, जैसे गार्सिया मार्केस से, तो मुख्य अंतर क्या नजर आता है? क्या सिर्फ विषयों का फर्क था?
विषय तो थे ही, जैसा हमने कहा, मर्दों की दुनिया बनाम औरतों और घर की दुनिया, लेकिन शैली में भी फर्क था। आयंदे के जादुई यथार्थवाद में अक्सर एक गहरी भावनात्मक सच्चाई और मनोवैज्ञानिक समझ होती है, खासकर उनके महिला किरदारों में। उन्होंने उस शैली को अपनाया जरूर, लेकिन उसे ज्यादा निजी, ज्यादा भावनात्मक और कहें तो ज्यादा दिल से महसूस होने वाला बना दिया। देखिए, शुरुआत में कुछ आलोचकों ने उन पर मार्केस की नकल का आरोप भी लगाया था।
अच्छा।
हाँ, लेकिन जल्दी ये साफ हो गया कि उनकी आवाज अपनी है, मौलिक है और उसमें एक स्पष्ट स्त्रीवादी दृष्टिकोण है।
उनकी विरासत आज क्या है? क्यों वो आज भी इतनी पढ़ी जाती हैं? क्या लगता है?
उनकी विरासत बहुत बड़ी है। एक तो उन्होंने लातिनी अमेरिकी साहित्य को, खासकर उसकी कहानियों और जादू को, दुनिया भर के पाठकों तक पहुंचाया, खासतौर पर अंग्रेजी बोलने वाले पाठकों तक।
ये तो है।
बहुत से लोगों के लिए लातिनी अमेरिका से पहला परिचय आयंदे की किताबों के जरिए ही हुआ। दूसरा, उन्होंने ये साबित किया कि औरतों के अनुभवों पर आधारित कहानियां, घर परिवार पर केंद्रित कहानियां, वो भी साहित्यिक रूप से महत्वपूर्ण और व्यावसायिक रूप से सफल हो सकती हैं।
बिल्कुल।
उन्होंने बात की, कई लाटीना और महिला लेखिकाओं के लिए दरवाजे खोले, जैसे जूलिया एल्वारेज या सैंड्रा सिस्नेरोस का नाम लिया जाता है।
और आज के समय में उनकी प्रासंगिकता, मतलब आज के दौर में उनकी कहानियां क्यों पढ़ी जानी चाहिए?
देखिए, आज जब हम दुनिया भर में विस्थापन देख रहे हैं, शरणार्थी संकट हैं, राजनीतिक बंटवारे हैं, औरतों के हकों की लड़ाई जारी है,
हाँ, ये सब मुद्दे तो हैं,
तो आयंडे के विषय, निर्वासन, न्याय की तलाश, यादों को सहेजना, औरतों की ताकत, ये पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि जुल्म और मुश्किलों के दौर आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसान का जज्बा, प्यार और कहानी कहने की ताकत, वो हमेशा बनी रहती है।
बहुत सही कहा। अच्छा, कुछ और रोचक बातें आयंदे के बारे में, जैसे उनका जन्म पेरू में हुआ, ये तो हमने बताया।
हाँ, और ये कि उनके पिता के चचेरे भाई यानी उनके अंकल सल्वाडोर आयंदे थे।
हाँ, ये तो जाहिर है नाम से।
जी, लेखिका बनने से पहले उनका पत्रकारिता और टीवी में सफल करियर था। द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स की शुरुआत दादाजी के नाम लिखे खत से हुई थी। और एक और अहम बात
बताइए,
अपनी बेटी पॉला की मौत के बाद उन्होंने उसकी याद में 1996 में इसाबेल आयंदे फाउंडेशन शुरू किया, जो दुनिया भर में औरतों और लड़कियों के अधिकारों, उनकी सेहत और सुरक्षा के लिए काम करता है।
ये बहुत अच्छी बात है, मतलब अपने व्यक्तिगत दुख को एक सकारात्मक शक्ति में बदलना।
बिल्कुल।
तो कुल मिला के इसाबेल आयंदे की दुनिया कहानियों, यादों, जादू और इतिहास के धागों से बुनी है। उनकी कहानियां हमें सिर्फ किसी दूसरे देश या समय में नहीं ले जाती, बल्कि इंसानी भावनाओं की गहराई और मुश्किल हालात में भी उम्मीद बनाए रखने की ताकत का एहसास कराती हैं।
और शायद ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि कैसे कहानियां, खासकर वो जो हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बनती हैं, वो ना सिर्फ हमारी निजी यादों को सहेजती हैं, बल्कि हमारे सामूहिक इतिहास की समझ को भी बदल सकती हैं। खासकर तब जब सत्ता में बैठे लोग कुछ सच्चाइयों को मिटाना चाहते हों। आयंदे का काम हमें याद दिलाता है कि हर कहानी मायने रखती है और सच को याद रखना अपने आप में प्रतिरोध का एक तरीका है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।